प्यारे साथियों नमस्कार। आज 4 मई 2016 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का भी जिन्होंने एकेडमी के सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं स्वाति जो न्यू दिल्ली से हैं और दूसरी फ्रेंड हैं खुशबू वार्ष्णेय, आप भी न्यू दिल्ली से हैं। तो स्वाति और खुशबू, आप दोनों का एकेडमी की मैं अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने जिस तरीके से अभी जो नए परिवर्तन एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के .com में किए हैं उनके बारे में जानकर सच पूछिए तो हम सभी को बेहद खुशी हो रही है जिस तरीके से आप लोगों ने उनका स्वागत किया है। और मैं आप लोगों के इन प्रतिक्रियाओं का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपनी राय दी और राय देने के हिसाब से ही फिर हम लोगों ने उसमें आवश्यक परिवर्तन किए। और लगातार हम लोगों की कोशिश होगी कि आप लोगों की जरूरत के हिसाब से उसमें लगातार अपग्रेडेशन करते जाएं। खासकर मुझे ये जानकर भी बेहद खुशी हुई कि करेंट कंटेंट का जो नया सब टाइटल नॉलेज सेंटर में डाला गया है उसको आप लोगों ने बहुत ही ओपन, बहुत ही खुले दिल से उसका वेलकम किया है, उसका स्वागत किया है। तो मित्रों, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा मित्रों, आज जब मैं सुबह मेल देख रहा था तो बहुत से मेल्स मुझे इस बारे में मिले कि जो मंडे को ऑडियो फॉर एक्सीलेंस आता था उसे फिर से शुरू किया जाए। मित्रों, मेरे लिए ये एक बहुत खुशी की बात है और उससे भी बड़ी बात तो यह कि आत्मसंतोष का विषय है कि आप लोगों का इतना प्यार ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को मिल रहा है। लेकिन सोचने की बात फ्रेंड्स ये है कि या तो हम ऑडियो फॉर एक्सीलेंस दे सकते हैं या फिर डेली ऑडियो गाइडेंस जिस तरीके से दिया जा रहा है वह दिया जा सकता है। दोनों कर पाना संभव नहीं है, व्यावहारिक रूप में भी संभव नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने सुझाया कि सैटरडे का इस्तेमाल कर लिया जाए क्योंकि सैटरडे को ऑडियो नहीं आता है। मित्रों, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि डेफिनेटली वो सभी के लिए सैटरडे को ऑडियो नहीं आता है, लेकिन मुझे सैटरडे को भी ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है और उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे दूसरे दिन की बजाय ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि सैटरडे का जो मेरा ऑडियो होता है वो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के रूप में होता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूं, विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं ताकि उनके मन में, उनके दिमाग में वह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से रच बस जाए और साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट पर किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, किसी सब्जेक्ट पर कैसे कितनी अपनी पकड़ बनाई जानी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से पूछे गए सवालों के जवाब दे सके, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं वो टॉपिक उन्हें प्रोवाइड करता हूं। डेफिनेटली वो सभी के लिए नहीं होता, वो हमारे क्लास स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बैच के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए मित्रों, आप लोग यह बिल्कुल ना सोचें कि सैटरडे का वक्त खाली रहता है। हाँ, संडे का दिन मेरा जरूर खाली रहता है और मैं चाहूंगा कि मैं कम से कम संडे के दिन को जरूर अपने लिए खाली रखूं और अपने लिए ही नहीं बल्कि बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये भी चाहूंगा कि संडे का दिन आप लोगों के लिए भी खाली हो। क्योंकि देखिए, अगर महीने दो महीने की बात है तो हम तेज दौड़ सकते हैं लेकिन ये तो पता नहीं अनंत सिलसिला जैसा है, मेरे लिए तो कह लीजिए कि अनंत सिलसिला जैसा ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। आप लोगों के लिए साल, दो साल, तीन साल, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक के लिए हो सकता है और फिर आप अपना रास्ता बदल करके एक नई प्रणाली की जीवन जीने लगेंगे। लेकिन मेरे लिए ये पता नहीं कितना लंबा रास्ता है, मैं अब नहीं जानता, लेकिन मुझे मालूम है कि अब मेरे लिए एकमात्र रास्ता यही है। तो मित्रों, इस लिहाज से मैं संडे के दिन को खाली रखने की आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और डेफिनेटली आप लोगों को भी यह सलाह दूंगा कि आप लोग भी अपने संडे को खाली रखें, ताकि जो नेक्स्ट वीक के जो 6 डेज होंगे, जो 6 दिन होंगे, उनका आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। मित्रों, जैसा कि मैं लगातार अपने डेली ऑडियो में आप लोगों से ये बात शेयर करने की कोशिश करता हूं कि जो मेहनत होती है वो उस मेहनत का भी अपना विज्ञान होता है, और यदि हम उस विज्ञान को समझे बिना केवल मेहनत करने में लगे रह जाएं तो सच पूछे तो फिर परिणाम, उसके रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिलते जो आप उम्मीद करके रख कर इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मित्रों, ये मेरी छोटी सी सफाई है ऑडियो फॉर एक्सीलेंस के ऊपर। हाँ, पूजा राजपूत ने एक सजेशन अलग तरीके का दिया है। उन्होंने कहा है कि सर, ऑडियो फॉर एक्सीलेंस नो डाउट कि बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो डेली ऑडियो में चीजें मिल रही हैं वो भी बहुत बेहतर हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि अभी कुछ समय तक इस डेली ऑडियो को कंटिन्यू रखा जाए और बाद में कुछ समय के बाद फिर से ऑडियो फॉर एक्सीलेंस पर आया जाए, और इस तरीके से ये दोनों का ही एक तरह जुगलबंदी आप कह लीजिए अलग अलग समय में चलती रहेगी। पूजा राज, इसके लिए बहुत बहुत इस सलाह के लिए धन्यवाद, और हो सकता है कि इस बात पर हम लोग आगे चलकर विचार करें। मित्रों, एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए है, बेंटेन बुक्स से, जहां से ये हमारी सारी किताबें आप आई, इसके कैसे बनेंगे और जो दूसरी किताबें आप जो पढ़ते हैं वहीं से छपी है, एक अभी किताब आई है इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर, पावर ऑफ इंट्यूशन। ये मित्रों इंट्यूशन जो होता है उसके ऊपर किताब आई है, और बहुत ही अच्छी किताब है ये। किताब मैंने पढ़ी है और खासकर दो चीजों में आपके लिए ये बहुत मददगार होगी। एक तो जनरल स्टडीज का जो 4th पेपर है, अगर आप 2013 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो उसमें सीधे सीधे अंतरात्मा की आवाज पर बात की गई थी, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस के बारे में पूछा गया था, और ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन को ही शो करते हैं, वह उसमें आपकी मदद करेगी। दूसरे लाइफ मैनेजमेंट के हिस्से के लिए भी बहुत मुझे लगता है कि उपयोगी होगी। ऐसा नहीं है कि ये केवल उसी के लिए उपयोगी है जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि एक जनरल रीडिंग की किताब है। आपके परिवार के जो सदस्य हैं और दूसरे लोग हैं उनके लिए भी यह किताब मैं समझता हूं कि बहुत ही मार्गदर्शक किताब हो सकती है। तो इंट्यूशन पावर जो है इसका नाम है मित्रों, और आप लोग देखिए कि अगर आप लोगों को किताब मिल जाती हो तो आप लोग, मैं चाहूंगा कि वो किताब जरूर लें, और ये amazon.in पर तो आपको ये किताब मिल ही जाएगी। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबकी प्रतिक्रियाओं के लिए, जो आपने नए फॉर्मेट को जिस तरीके से वेलकम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। फ्रेंड्स, इसमें मैं कल की ही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। कल मैंने मेहनत वर्सेस टैलेंट, लेबर वर्सेस टैलेंट के बारे में मैं बातें कर रहा था, और मैंने कुछ आपको जीवन के तथ्य बताए, खासकर जो हमारे दत्तू जो नौकायान में अभी जिन्होंने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, दीपा कर्माकर ने जो क्वालिफाई किया है, उनको लेकर के मैंने कुछ अपनी बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये मान करके चलिए कि जो प्रकृति की अपनी एक भाषा होती है, उसकी अपनी एक स्टाइल होती है। अब ये बात अलग है कि हम प्रकृति की उस भाषा को समझ नहीं पाते। आप उर्दू अगर जानते नहीं है तो उर्दू लिपि को आप नहीं समझ पाएंगे। जो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा को समझ सकता है। चूंकि जो प्रकृति की भाषा है वो हम नहीं जानते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकृति अपनी तरह से हमसे बात करती है। मैं इस सिद्धांत का व्यक्ति हूं। दोस्तों, जहां तक प्रतिभा का सवाल है, प्रकृति भी हमें कोई ना कोई चीज देती है, एक ना एक कोई चीज विशिष्ट रूप से वह हमें देती ही है। याद रखिए कि जीवन में कुछ भी करने के लिए, यहां तक कि बड़ा से बड़ा काम भी करने के लिए, आपको ढेर सारी चीजों की जरूरत नहीं होती कि ढेर सारी चीजों का आपके सामने ढेर लगा दिया जाए, बिल्कुल एक समूह खड़ा कर दिया जाए, आपको छांटना मुश्किल हो जाए कि इसमें से आप किसका उपयोग करें किसका नहीं, और फिर आप सोचें कि अब मैं बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं क्योंकि मेरे पास ढेर सारी चीजें हैं। इस भ्रम से खुद को मुक्त कीजिए। आपको मुक्त कर लेना चाहिए कि मुझे ढेर सारी चीजें चाहिए। सच पूछे मित्रों तो जिंदगी में चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूं, उसके लिए केवल 1-2 चीजों की जरूरत होती है, दैट्स ऑल। 1-2 चीजें आपके पास है और प्रकृति ये आपको देती है, और यदि आपने पहचान लिया कि नहीं मेरे पास ये चीज है बस केवल पहचानने की बात है, या कह लीजिए कि जो चीज है उस पर आपको भरोसा करने की बात है। यह भरोसा दोनों तरह से होना चाहिए, पहला तो यह कि यह चीज मेरे पास है इसका भरोसा होना चाहिए, और दूसरा भरोसा इस बात का होना चाहिए इसका इस्तेमाल करके मैं ये बड़ा काम कर सकता हूं। जब आपके पास ये दो तरह के भरोसे हो जाते हैं तो फिर आप, मैं, हर कोई जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैंने देखा है मित्रों कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास ये भी हो, 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 और सच पूछिए तो जब करने की बात आती है तो हमेशा वो एक चीज आगे बढ़ा देंगे कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मित्रों, जो चाहिए चाहिए की बात करते हैं, जो लगातार डिमांड करते हैं और जो उनके पास है उसे देख ही नहीं पाते, उसे समझ ही नहीं पाते, उसकी वैल्यू ही नहीं कर पाते, और जो नहीं है उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो सारा वक्त, सारी क्षमताएं केवल उन्हीं चीजों के पीछे भागने में निकल जाती है और कुछ नहीं होता। दोस्तों, कल के चैनल्स पर आपने देखा होगा, आज के अखबारों में आपने पढ़ा है कि एक बहुत गजब की बात है कि जो इस बार नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जो कल हमारे राष्ट्रपति जी ने आर्टिस्ट, फिल्म जगत के लोगों को दिए, उसमें आप कल्पना करके देखिए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मैं दोहरा रहा हूं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभी भी 72-73 साल के उम्र के अमिताभ बच्चन को मिल रहा है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, कल्पना करके देखिए। और ये उनका फोर्थ नेशनल अवार्ड रिकॉर्ड है, किसी को चार अवार्ड नहीं मिले हैं, 72 इयर्स की एज में अमिताभ बच्चन को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनका नाम बहुत है? नहीं मित्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इन्हीं चीजों को समझना होगा। लगातार अमिताभ बच्चन अपने को इनोवेट करते रहते हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शारीरिक रूप से वो कितनी तरह की कमजोरियों के शिकार हैं। उनका कहा जाता है कि कंधा झुका हुआ है, एज आप देख रहे हैं 72 ईयर से, बीच में कि एक तरह से उनका पुनर्जीवन हुआ है, किस तरीके से वो बुरी तरह से बीमार पड़े थे, बीच बीच में पेट में दर्द उठता है, लेकिन उनकी जिजीवसा देखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास क्या चीज है, वो जानते हैं कि मैं एक्टिंग कर सकता हूं। अगर एक्टिंग कर सकता हूं तो सिर्फ एक्टिंग से बात नहीं बनेगी, इस एक्टिंग की प्रतिभा को सामने लाने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए दूसरी ढेर सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें है विल पावर, जिसमें है डिसिप्लिन, जिसमें है लगातार इनोवेट करते रहना, अपने को लगातार एक्सप्लोर करते रहना, आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, और लगातार अपने को जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो एक्टिंग के फील्ड में हो रहा हो, चाहे टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रहा हो, उन सब तक अपने को अपडेटेड रखना, तब जाकर के अमिताभ बच्चन, जिनको ये 30 साल की उम्र में ये पुरस्कार ले लेना चाहिए, अमिताभ बच्चन को पछाड़ करके 72 साल की उम्र में ये पुरस्कार ले रहे हैं। और फिर बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत, इतनी कम उम्र में, जो शायद 30 साल के आसपास की उम्र होगी, उनका थर्ड नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है, थर्ड नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। लोग एक बार के लिए तरसते हैं कि किसी तरह से बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस बन जाएं, और वो तीसरी बार अवार्ड ले रही हैं। आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, लेकिन जाकर के आप उनके जीवन के संघर्षों को देखिए तो दंग रह जाएंगे। वो संघर्ष, वो बातें, वो तकलीफें जो आदमी को तोड़कर खत्म करने के लिए पर्याप्त होती हैं, उनको कंगना रनौत ने अपने साहस से, अपनी जिजीवसा से खुद तोड़कर रख दिया। उन लोगों ने सरेंडर किया, उन तकलीफों ने सरेंडर किया, उन परेशानियों ने संघर्ष सरेंडर किया, उन कमजोरियों ने सरेंडर किया, क्योंकि सबसे पहले तो कंगना रनौत को यही लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और फिल्म दुनिया तो पूरी इंग्लिश की है, मैं वहां सर्वाइव कैसे करूंगी। और आज वो सर्वाइव भी नहीं कर रही है, थर्ड अवार्ड ले रही है, तीसरी बार ले रही, थर्ड नहीं तीसरी बार अवार्ड ले रही, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, क्योंकि उसके दिमाग में भी, उनके दिमाग में भी, कंगना के दिमाग में भी ये बात है कि नहीं, आई नो एक्टिंग, ये प्रतिभा तो मुझ में है, लेकिन क्या प्रतिभा होने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, उसके लिए फिर आपको वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो अभी मैंने अमिताभ बच्चन जी के बारे में कही। तो मित्रों, जीवन के इस सत्य को समझिए, सफलता के इस रहस्य को समझिए, यह रहस्य नहीं है, बहुत ही स्पष्ट चीज है, और हम सब बड़ी छोटी छोटी परेशानियों के सामने अपने को निरीह बना करके, अपने को अपने प्रति बड़ा दया का भाव रख करके सरेंडर कर देते हैं, मांगते हैं, दो लोगों दूसरों से दया की याचना करते हैं, अगर मैं खुद अपने प्रति दया का भाव रखूंगा, आप कल्पना करके देखिए तो मेरे अंदर की जो जिजीविषा है, जो ताकत है, जो जुझारूपन है, वो कैसे सामने आएगा। मैं तो पहले से ही सरेंडर किए बैठा हूं। ये लोग ऐसे नहीं रहे हैं मित्रों, ये लगातार जूझते रहने वाले लोगों में है। और दिमाग की ताकत तो तभी पैदा होती है जब आप जूझें सरेंडर करने से नहीं। 72 ईयर्स की एज में भी अमिताभ बच्चन ने सरेंडर नहीं किया है। जब आप सरेंडर नहीं करेंगे तो सामने की सारी मुसीबतें ऑटोमेटिक अपने आप को आपके सामने सरेंडर करेंगी। तो मित्रों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, सच्ची बात यह है कि कल के AIR न्यूज में तो और भी कुछ ऐसी बातें नहीं है कि मैं आपसे बहुत शेयर कर सकूं। एक ही खबर मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी, वो भी मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी, और वो ये है कि अमेरिका की एक संस्था ने धार्मिक रिपोर्ट पेश की है, और उस धार्मिक रिपोर्ट में उन्होंने ये दिया कि भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है या सहनशीलता है, जो भी कह दीजिए, सन 2015 के बाद वो कम होती गई है, और इस तरह की बातें उन्होंने कही है। और इसका खंडन भारत सरकार ने तो क्या किया, बल्कि उसने तो यही कह दिया कि हम आपको इग्नोर करते हैं, हम आपकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। और सच बात भी है, पहली बात तो यही है कि अमेरिका वो होता कौन है जो हमारे यहां की सहनशीलता और सहिष्णुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे और उस पर दुनिया के सामने एक रिपोर्ट रखे। ये अमेरिका की अपनी दादागिरी है कि वो सारी दुनिया के सभी देशों के बारे में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता रहता है, जैसे कि सबका उसने ठेका ले रखा हो, पहली बात। दूसरी बात जो सरकार ने जो कहा है, जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सच बात यही है कि सोशल स्ट्रक्चर उसको बाहर का आदमी नहीं समझ सकता। एक कहीं मान लीजिए कि थोड़ा सा दंगा हो गया तो उसको लगेगा कि नहीं, यहां तो धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं है। मान लीजिए कि कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़े हो गए या सिख झगड़ा हो गया या ईसाई के साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी झगड़ा हो गया, तो उनको लगेगा कि बाप रे, ये तो पूरा का पूरी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो रही है, पूरे के पूरे देश में असहिष्णुता का माहौल बना हुआ है, इस तरह की बातें होने लगती हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि भारत में दो सबसे बड़ी चीजें हैं। पहली बात है भारत की अपनी दार्शनिक परंपरा। बिगनिंग से, शुरू से लेकर के आज तक भारत की जो फिलॉसफी ही रही है वो बहुत ही लिबरल फिलॉसफी रही है। इसके जैसी लिबरल फिलॉसफी तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। आप उठा करके देखिए वैदिक परंपरा से लेकर के और आज तक की फिलॉसफी को देख लीजिए, आप मॉडर्न फिलॉसफी में कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए, मतलब हमारे राज्य का दर्शन शास्त्र कौन है, राज्य के दर्शन शास्त्र की किताब कौन है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तक में भारत ने शामिल किया है इस लिबरल एक थॉट्स को, लिबरल कॉन्सेप्ट को, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, ये सारी बातें कही गई हैं। फिर 125 करोड़ की आबादी है, इतने धार्मिक परंपराओं के लोग, धर्म के लोग रह रहे हैं, इतनी लोक परंपराओं के लोग रह रहे हैं, इतनी भाषा, इतनी संस्कृतियां, उस तरह से अगर छोटे छोटे हम संस्कृतियों की बात करें कि लोग रह रहे हैं, और 125 करोड़ की आबादी, इसमें अगर कुछ छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं जो बड़ी स्वाभाविक हैं, हो ही जाती हैं, पता नहीं उनके पीछे कौन से कारण होते हैं, कभी राजनीतिक कारण होते हैं, कभी व्यक्तिगत द्वेष भी होता है, कभी धार्मिक कारण भी हो जाते हैं, नो डाउट, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि भारत असहिष्णु हो रहा है और भारत में धार्मिक स्वतंत्रताएं नहीं हो रही हैं। मित्रों, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि चीजों को थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत में अभी एक बहस चली थी सहिष्णुता असहिष्णुता की, कि भारत लगातार असहिष्णु होता जा रहा है सरकार की कुछ नीतियों को लेकर के, सरकार के जो कुछ सरकार आने के लिए या कुछ सांसदों के कहने पर जो कुछ उकसावे में जो बातें फैली आई, उन सबको लेकर के एक इस तरह का वातावरण बनता हुआ लोगों को दिखाई दिया। लेकिन सच्चाई में क्या है? सच्चाई यह है मित्रों कि भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे मैंने फिलॉसफी का नाम दिया क्योंकि फिलॉसफी से ही संस्कृति पैदा होती है, वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी उदारवादी है कि वहां अगर कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ऐसी चीजें हो भी जाती हैं तो वह एग्जिस्ट नहीं करेंगी, रह नहीं सकती। आप कल्पना करके देखिए कि सन 1975-78 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन 70 और 80 के बीच में ही मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी। मार्गरेट थैचर वो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी है वो कहते हैं मैग्ना कार्टा 1215 से शुरुआत हो गई है, वहां से डेमोक्रेसी चली आ रही है और वो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। और कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है 1970-80 आठवें दशक में जाकर के, और भारत में भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी 1947 में देश आजाद हुआ, और उसके कितने सालों के बाद, उसके 19 सालों के बाद 1966 में भारत में भारत के जैसे विशाल देश में आप कह लीजिए इंदिरा गांधी जी के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। ये कैसे संभव हुआ? तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो रियल में हैं, जिनके आधार पर हमें भारत का मूल्यांकन करना पड़ेगा। कल मैंने एक बात आप लोगों से और भी कही थी, बताई थी फ्रेंड्स, कि जब हम अपने देश की तुलना अमेरिका से करते हैं या चीन से करते हैं, दूसरे देशों से करते हैं, तो हमें सीधे सीधे तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं, जब तक हम उन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हमारी जो एनालिसिस है, खासकर जो सिविल सर्विस के लिहाज से एनालिसिस होगी, वो सटीक हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए कि आप चाइना से भारत की तुलना करते हैं, मान लीजिए नो डाउट चाइना भारत में बहुत काफी कुछ समानताएं हैं, दोनों की आबादी बहुत ज्यादा है, दोनों एशिया के देश हैं, दोनों अभी इकोनॉमी में डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है वो थोड़ा सा आगे निकल गया लेकिन अभी डेवलपिंग दौर से गुजर रहे हैं, दोनों अभी इकोनॉमी में एक तरह से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर से भी बने हुए हैं, ये सारी समानताएं हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप में होने के कारण उनके काफी कुछ फिलॉसफी भी काफी कुछ मिलती जुलती है, कि कहीं वहां ताओ है, बुद्धिज्म है, ये सारी चीजें हैं और हमारे यहां की फिलॉसफी से काफी मेल भी खाती है। लेकिन दूसरी चीजें बहुत अलग हैं। एक तो आप जब नक्शे पर देखेंगे तो चीन का जो ज्योग्राफिकल एरिया है भारत की तुलना में बहुत ज्यादा है, हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, चीन के साथ जब भारत की तुलना होती है तब वह है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, वहां कम्युनिज्म है आज भी, सत्ता पर कुछ लोगों का अधिकार है, इन अदर टर्म्स आप कह लेंगे वहां डेमोक्रेसी नहीं है, भारत जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमेशा अपने देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, उन्हें 5 साल के बाद अपने लोगों के बीच जाकर अब जवाब देने होते हैं, वहां ये सिस्टम नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दबाव डाल सकते हैं अपने लोगों पर कि एक ही बच्चा होना चाहिए, आप लोगों को इतनी ही सैलरी मिलेगी, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप यही काम करेंगे, इस तरह के दबाव डालकर वो कुछ भी करा सकते हैं, हम नहीं करा सकते। तो ऐसी स्थिति में आप हम कैसे एक तरह से सही सही दोनों की तुलना कर सकते हैं? मित्रों, इसीलिए मैंने खासकर जो अमेरिका की धार्मिक रिपोर्ट आई है इसको थोड़ा से विस्तार में ले जाकर के आपसे बात की है, ताकि आपके दिमाग में जो एनालिसिस करने की पावर है वो एक रियलिस्टिक टर्न ले सके। अगर टर्न मैं नहीं भी कहूं तो कह लीजिए, कह सकते हैं कि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच वाली बन सके। आप अपने दिमाग को, अपनी आंखों को जितना खुला रखेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी, और फिर आपकी जो एनालिसिस भी है वो ज्यादा परफेक्ट होती चली जाएगी। और आपको मालूम है मित्रों, आप सिविल सर्विस के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देख लीजिए, स्पेशली मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, आप दो चीजें देखिए, पहला तो टॉपिक पर जाइए कि किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखेंगे कि जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सामान्य किस्म के टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि वो टॉपिक्स बड़े अननोन से टॉपिक हैं, ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है, जिनके बारे में आपने कभी कुछ सुना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक्स आपको बड़े जाने पहचाने से लगेंगे। इसके बाद फिर आप उस टॉपिक पर क्या पूछा गया है वो देखने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखेंगे कि उससे जो पूछा भी गया है वो बहुत ही सामान्य सी चीज है, बहुत ही व्यावहारिक चीज है, वो तो हम अखबारों में भी पढ़ते थे, बातचीत भी होती रहती थी, इस पर तो डिबेट भी खूब हुआ है, तो फिर अब मुसीबत क्या है, अब क्या आपके सामने चुनौती क्या है? चुनौती सिर्फ यही है कि जो कुछ भी आपने उस टॉपिक के बारे में सुना, समझा, पढ़ा, देखा, विचार किया, अब उनको संकलित करके और उन पर अपनी तरफ से 200 शब्दों में, 250 शब्दों में अपनी बात आप कह दें, यही तो चुनौती है, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि जो इस तरह की जो बातें आती, जो मैंने अभी अमेरिका के धार्मिक रिपोर्ट पर आपसे बात की, तो जब हम चीजों को इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं, इस तरह के बहस में भाग लेते हैं, या कह लीजिए कि इस तरह के लेक्चर्स सुनते हैं या डिबेट सुनते हैं, अगर हम खुले दिमाग से सुन रहे हैं तो फिर हमारा दिमाग एक्सपेंड करता है, तब सही मायने में हम रियलिटी के ज्यादा करीब पहुंच पाते हैं। तो मित्रों, आज AIR न्यूज से इतना ही। अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने नया फॉर्मेट शुरू किया है। देखा है आपने कि कुछ कुछ चीजें नई हम लोग लेकर के आए हैं, और इसमें जो करंट कंटेंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी करंट कंटेंट में आप देखेंगे कि GM फसलों को लेकर के हमने एक कुछ बातें डाली हैं, जो खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक अखबार में आर्टिकल छपा था, उसी पर बेस्ड करके वो GM फसल के बारे में डाला गया है। और GM फसल बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि करंट कंटेंट में हम लोग जो कुछ भी डालेंगे वो याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि वो केवल वही चीजें होंगी जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, उन्हीं को डालेंगे। दूसरी चीजें मित्रों की जो करंट कंटेंट में चीजें डाली जाएंगी, ये मत मान करके चलिए कि वो अपने आप में कंप्लीट ही है, आपको लगातार उन्हें अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आर्टिकल फॉर्म में होंगे वो अपने आप में कंप्लीट होंगे। जैसे कि कल आप लोगों ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट आर्टिकल जैसा था, लेकिन परीक्षा में तो उस ज्यों का त्यों पूछा नहीं जाएगा। आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है और उस मटेरियल का इस्तेमाल अब आप उत्तर लिखने में कैसे कर सकते हैं, यह आप लोगों के ऊपर है। तो यह एक बहुत नई शुरुआत हमने की है। ठीक इसी तरह से अब मेरी कोशिश यह हो रही है कि जो मैं डेली ऑडियो आपको प्रोवाइड करता हूं, इसको भी मैं अब थोड़े से नए ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करूं। नए ढंग से प्रेजेंट करने का मतलब है कि अब जो मेरी एनालिसिस होगी वो एनालिसिस अब उस टॉपिक तक ही एकदम सीमित नहीं होगी, बल्कि उस टॉपिक को मैं इस तरह से एक्सपेंड करूंगा, उस परिधि से बाहर निकल के। जैसे कह लीजिए कि अगर फुटबॉल का ग्राउंड है तो मैं फुटबॉल के ग्राउंड में ही न खेल करके फुटबॉल ग्राउंड के बाहर भी खेलूंगा, लेकिन वो होगा उसी का ही हिस्सा, ताकि आपका दिमाग एक्सपेंड कर सके, आपके दिमाग में चीजें और भी ज्यादा आ सके। यानी कि आपका दिमाग केवल उसी टॉपिक तक सीमित न हो, वो जब अपनी सीमाओं को तोड़ करके बाहर जाएगा तब उसमें ढेर सारी नई चीजें आकर के जुड़ेंगी और आप सही मायनों में एनरिच होंगे। इस आधार पर अब मैं अपने जो चाहे वो AIR न्यूज की एनालिसिस हो या न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स की एनालिसिस हो, इस तरह का अब उसे शेप देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, आज दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स मैं डाल रहा हूं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट है। मजेदार बात है कि कल के अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं किसी एडिटोरियल कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा था, कि भारत में सोचिए कि 125 करोड़ की आबादी है और इसमें केवल 1% लोग इनकम टैक्स देते हैं, 1% लोग इनकम टैक्स देते हैं। उसमें भी इस एडिटोरियल कमेंट में देखिए कैसे लॉजिकल दिया हुआ है कि 2011-12 में केवल 18,000 लोग, आंकड़े दिया हुआ कि ऐसे लोग थे जिन्होंने ये माना कि उनकी जो आमदनी है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक है, 18,000 लोग। और मजेदार बात है कि अगर हम आंकड़े दूसरे देखें 2013 में, तो जगुआर, मर्सिडीज, BMW, रॉल्स रॉयस जैसे आलीशान कारें जो करोड़ों करोड़ों की होती हैं, एक साल में 33,000 से अधिक बिक गए, 33,000 से अधिक बिक रहे हैं। तो ये जो एक साल में 33,000 करोड़ों रुपए वाली कार जो बिक रही, इनको चलाने वाले लोग कौन है? वहां 33,000 का आंकड़ा है और 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाले 18,000 लोग हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे दिखाई दे रहा है? और फिर हमारे पास डेटा है कि देश के जो 1% लोग हैं, 1% लोग, वो 16% पूरी देश की जो संपत्ति है उसके 16% पर उनका अधिकार है। सोच कर दे, 1% का मतलब कितना हो गया, 125 करोड़। और ये 16% पर कब्जा किए हुए हैं और 1 करोड़ रुपए की सालाना कमाई देने वाले केवल 18,000 लोग हैं। यानी कि मामला कहीं ना कुछ बहुत गड़बड़ है। तो मित्रों, इसे मैंने अंडरलाइन किया है आपको, खासकर भारत में जो इनकम टैक्स का जो सिस्टम है कहां फॉल्स है, किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, इन इश्यूज पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। इसे आप देखिएगा और लॉजिकल तौर पर इसे एक्सेप्ट कीजिएगा और फिर इसे आप जोड़ दीजिएगा ब्लैक मनी से, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को शो करके उस पर इनकम टैक्स नहीं दे रहा है लेकिन उसकी इनकम है, तो बट नेचुरल है कि वो सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी के रूप में कन्वर्ट होगा। एक तो ब्लैक मनी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशन हैं और जो दूसरी चीजें वो हमारी ब्लैक मनी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो उन सबसे रिलेट करके आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा जो आर्टिकल है दोस्तों वो इकोनॉमिक टाइम्स का है, करप्शन को लेकर के है, और ये केवल एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लिखा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने चुनाव फंड में पैसा लेती है उसको बेस बना करके ये आर्टिकल तैयार किया गया है। इसको आप लोग पढ़ेंगे, बहुत दबाव डाला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज पर कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आए और जो भी उनको चुनावी चंदा मिलता है उसको ट्रांसपेरेंट करें, लोगों को बताएं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो ऐसा कर रही है और वो है आम आदमी पार्टी। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और तीसरा मैं आपको दैनिक भास्कर का एक न्यूज आइटम डाल रहा हूं दोस्तों की लोकसभा की जो स्थायी समिति संसदीय समिति है उसने खासकर जल के मामले को लेकर के ये अपनी सिफारिश दी है कि जो जल जो विषय है अभी तक राज्य सूची का विषय है जल, तो उसको समवर्ती सूची में डाला जाना चाहिए क्योंकि जल के जो संकट होते हैं जल के जो विवाद होते हैं तभी वो निपट सकेंगे। तो ये बहुत डिटेल में है और इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा और इससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इनकी अब आपको डिटेल में एनालिसिस करके बता सकूं, लेकिन आप जरा भी ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, जल्दबाजी में पढ़ेंगे कि भैया पढ़ करके निपटाओ यार, ये जल्दी से जल्दी खत्म करो, तब फिर बात अलग है। दोस्तों न्यूज़पेपर से इतना ही, अब मैं ईमेल पर आता हूं। प्रशांत कुमार का ईमेल है पटना से, उन्होंने अपनी एक घटना लिखी है कि जब वो बस में जा रहे थे तो किस तरह से उन्होंने एक महिला की मदद की, उनके बच्चे की मदद की और उससे उनको बहुत आत्मसंतोष प्राप्त हुआ। प्रशांत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान करके चलिए कि जब भी आप अच्छा काम करेंगे सामने वाले को अच्छा लगेगा और उससे भी बड़ी बात है कि खुद को अच्छा लगेगा, और जब खुद को भी अच्छा लग गया तो मान करके चलिए कि जब खुद को अच्छा लगता है तो आपके अंदर से बहुत अच्छी रेज निकलेंगी और जब वो रेज निकलेंगी तो आसपास फैलेंगी, दूसरों को भी खुश करेंगी और वहीं से लौट करके फिर वो अच्छी रेज आपके पास आएंगी, क्योंकि अच्छी रेज तो फिर अच्छी रेज को ही आपकी तरफ खींच करके लाएंगी, बुरी रेज को खींच करके लाएंगी। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साजिद हुसैन का मेल है मुंबई से, उन्होंने लिखा है कि सर आप जब ऑडियो करते हैं तो उसमें बहुत से हिंदी के शब्द आ जाते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। साजिद जी, मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं अंग्रेजी के शब्द बोलूं, लेकिन मैं जिस तरीके से बोलता, क्योंकि मेरे सामने कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं होती कि मैं उसे पढ़ रहा हूं, मेरी अपनी एक भाषा है और यदि मैं अपने दिमाग में ये रख करके बोलना शुरू करूंगा कि मुझे अंग्रेजी के शब्द भी दोहराने हैं तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा की पूरी तरह से बुरी तरह से खत्म हो जाएगा, कंटेंट गायब हो जाएंगे, उसका रिदम गायब हो जाएगा और केवल शब्द बचे रह जाएंगे। मेरी कोशिश है, मैं और कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है और वो ये कि जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप उन शब्दों को नोट कर लें, कागज कलम लेकर के सुनने बैठ जाएं, एक डिक्शनरी ले लें और फिर उन शब्दों के मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढ लें। हिंदी इंग्लिश भी डिक्शनरी आती है, केवल इंग्लिश हिंदी नहीं आती, हिंदी इंग्लिश भी आती है, इससे आपकी भी भाषा अच्छी होगी, चाहे आप जिस भाषा को भी जरूरत समझते हैं, और मैं भी इस संकट से थोड़ा सा बच जाऊंगा क्योंकि मैंने कई बार इस तरह की प्रैक्टिस अलग से की लेकिन मैंने देखा कि उससे मेरे थॉट्स गड़बड़ा जाते हैं। फिर भी मेरी यथासंभव कोशिश रहेगी, मैं आपके इस सलाह पर काम करता रहूंगा। तो मित्रों, सभी मेल लिखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, रानी कुंभकार भोपाल से, शालिनी बाराबंकी से, गौरव शर्मा दिल्ली से, सुमित कुमार दिल्ली से, अमन तिवारी सतना मध्य प्रदेश से, प्रियंका लिखार नागपुर से, ओपी जाट अजमेर से, विकास रंजन हजारीबाग झारखंड से, अमित सिंह मोनिका चौहान मुरादाबाद से, हिमांशु गुप्ता भरतपुर से, सुभाष मीना जयपुर से, रमाकांत शाह सिंगरौली मध्य प्रदेश से, राजेंद्र राव हैदराबाद से, प्राणजीत नाथ तेजपुर असम से, शैंकी कोट द्वारा उत्तराखंड से, दीपिका दुबे कृष्ण कुमार इलाहाबाद से, शैलेंद्र कुणाल कुमार जय कृष्ण झारसुगुड़ा उड़ीसा से, डॉक्टर अभिषेक तिवारी वाराणसी से और रितु रानी, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।